Bir Bhai Bhupino, Namo Buddhaya, Jai Bhim. So we're trying to get to know the Buddha.
तो हम बुद्ध को जानने की कोशिश कर रहे हैं.
We're trying, you could say, to communicate with the Buddha.
तो ऐसा हम कह सकते हैं कि हम बुद्ध के साथ संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं.
But we've already seen that the Buddha is really way beyond what we are.
लेकिन हमने देखा कि बुद्ध सही माने में हम जैसा अपना अस्तित्व समझते हैं उससे परे है.
So we can't get to know the Buddha through our ordinary means.
तो हमारे जो सामान्य जो साधन है या समझने की जो तरीके हैं, उनसे हम बुद्ध को पूरी तरह नहीं जान पाते.
Usually we use our senses to take in information.
तो अक्सर हम क्या करते हैं, हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है या जो इंद्रिय है उनका इस्तेमाल करते हैं चीजों को जानने के लिए.
We look at forms, we hear sounds.
जैसे कि हम किसी आकार को देखते हैं, ध्वनि को सुनते हैं.
And then we use our intelligence.
और हमारी जो बुद्धिमत्ता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं समझने के लिए.
But that's not enough to know the Buddha.
लेकिन यही केवल यानी पर्याप्त नहीं है बुद्ध को समझने के लिए.
It's as if we can't see the Buddha with this eye of flesh.
हम बुद्ध को केवल अपने जो मांस चक्षु है या केवल जो ये आंखें हैं उन्हीं से पूरी तरह देख पाएंगे ऐसा नहीं है.
Yes, we can see the form of the Buddha.
निश्चित रूप से हम बुद्ध का जो आकार है वह देख पाएंगे.
But we don't really see the Buddha with these eyes.
तो इस आंखों से सही मायने में हम बुद्ध को देखते नहीं है.
Well, perhaps we need some sort of magic eye.
शायद हमें कुछ जादुई आंख चाहिए.
You know that it's said that in other religions it's said the devas have a special eye.
और धर्मों में ऐसा बताते हैं कि जो देव है उनको एक विशेष आंख होती है.
And the devas can see what humans can't see.
और देव देख पाते हैं जो इंसान नहीं देख पाते.
But well, if that existed, it wouldn't be enough to see the Buddha.
अगर वह भी यहाँ होते तो शायद पर्याप्त नहीं है बुद्ध को देखने के लिए.
We need something else.
हमें और किसी चीज की आवश्यकता है.
We need what is called in Buddha Dhamma the Dhamma eye.
हम बौद्ध धर्म में उसे धम्म की आंख कहते हैं या धम्म चक्षु कहते हैं.
Now we've all got that to a very small extent.
अब वो आंख हमको कुछ हद तक मिली है.
And we're trying to develop our Dhamma eye here during this shibir.
तो इस शिविर के दौरान इस धम्म की आंख को हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं.
We can only see the Buddha with our spiritual imagination.
हमारे आध्यात्मिक कल्पनाओं से शायद हम बुद्ध को देख पाए.
We need to use a different faculty for perceiving the Buddha.
तो हमें पूरी तरह दूसरे चीजों का या आयामों का इस्तेमाल करना है बुद्ध को देखने के लिए.
And that's what our whole retreat is trying to develop in us.
तो यही शिविर हमें यह निर्माण करने की विकास करने की कोशिश कर रहा है.
We're a bit like human beings, like men and women, who've got eyes but don't know they've got eyes.
हम में से ऐसे कितने स्त्री पुरुष हैं जिनको यह आंख है लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं है कि उनके पास यह आंख है.
It's as if our eyes are closed all the time.
मान लीजिए ऐसा है कि हम हमेशा ही अपनी आंखों को बंद करके चलते हैं.
And our friends are saying, "Look, over there."
और हमारा मित्र कहता है कि देखिए वहाँ देखिए. हम कहते हैं क्या 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 मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है.
So, we're learning to open our Dhamma eye.
तो हम यहाँ सीख रहे हैं कि हमारे धम्म चक्षु या धम्म की आंख हम कैसे खोले. तो जैसे यह छोटी सी आंख खुलती है हमें थोड़ा थोड़ा दिखता है धुंधला सा वैसा शायद हम देख रहे हो. तो हो सकता है कभी कभी सुबूति ऐसी आंख आपकी खोल देते हैं बोलते कि देखिए. तो धीरे धीरे हम अपने धम्म की आंख खोलते हैं ताकि हम बुद्ध को देख पाए.
And we're doing that not just by using words and concepts.
तो हम यह करते हैं केवल शब्दों का या किसी कॉन्सेप्ट यानी किसी कल्पना का ही केवल इस्तेमाल करके.
We're also using poetry and image.
हम काव्य का और प्रतिमाओं का इस्तेमाल करते हैं.
And in this way we're getting closer and closer to that spiritual imagination which would enable us to see the Buddha.
तो इस तरीके से हम हमारी आध्यात्मिक कल्पनाओं का इस्तेमाल करते हैं जो हमें बुद्ध के करीब करीब ले जाने की कोशिश करता है.
So we're entering the mandala of spiritual imagination.
तो हम इस मंडल में प्रवेश कर रहे हैं अपने आध्यात्मिक कल्पनाओं से.
And we're getting to know thereby the mind of the Buddha.
तो इस तरीके से हम बुद्ध का जो मन है उसे जानने की हम कोशिश करते हैं.
So 2 days ago we came into the mandala from the east.
तो हमने बुद्ध मंडल में प्रवेश किया पूर्व दिशा से.
We came into the mandala with the rising sun.
हम मंडल में प्रवेश किए उगते हुए सूरज के साथ.
And we saw the blue Buddha.
और हमने नीले बुद्ध को देखा.
The blue Buddha with his स्पर्श मुद्रा.
हमने नीले बुद्ध को देखा भूमि स्पर्श मुद्रा से.
Holding his vajra.
उनके हाथ में यह वज्र था.
Accompanied by elephants.
हाथियों के साथ उनकी संगत थी.
With his mirror-like wisdom,
उनकी जो प्रज्ञा थी वह आईने समान साफ थी.
You could say that the blue Buddha is the Buddha of truth.
हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नीले बुद्ध है यह सत्य का प्रतीक है.
He is the Buddha who sees things exactly as they are.
ऐसा हम कहते हैं कि बुद्ध चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे वे वह है.
Then we went round the mandala to the south.
तो हमने थोड़ा सा हम थोड़े से आगे बढ़े उत्तर दिशा दक्षिण दिशा की ओर मंडल के.
We went to the south in the middle of the day.
हम दक्षिण दिशा में आए मंडल के एकदम दिन के मध्य में.
When the sun is at its height.
जब सूरज अपनी पूरी ऊंचाई पे होता है.
We saw the yellow Buddha.
हमने वहाँ पीले बुद्ध को देखा.
Yellow Buddha with his dana mudra.
यह पीले बुद्ध थे दान मुद्रा के साथ.
With his horses.
अपने घोड़ों के साथ.
With his jewels.
रत्नों के साथ.
With his wisdom of equality.
अपने समतामूलक प्रज्ञा के साथ.
And we saw that he is really the Buddha of beauty.
और हमने यह देखा कि यह सुंदरता से भरे बुद्ध है.
The Buddha of abundant qualities.
इतने अप्रतिम गुणों से भरे हुए बुद्ध.
A generosity that comes from an overflowing of wealth.
उनकी जो दान थी वह धम्म दौलत की वह मानो बह रही थी.
So we've seen the Buddha of truth. We've seen the Buddha of beauty.
तो हमने सत्य के बुद्ध देखे और हमने सुंदरता के बुद्ध देखे.
So now we move round the mandala one more quarter until we come to the west.
अब हम आगे थोड़ा सा दूसरे कोने में बढ़ते हैं.
West.
अब पश्चिम दिशा की ओर.
And here we see a new Buddha.
और यहाँ हमें और एक नए बुद्ध मिलते हैं.
Now this is really the red Buddha of love.
अब यही वह बुद्ध है जो लाल बुद्ध है प्यार के.
So we're getting to know the Buddha more and more deeply.
तो इस तरीके से हम मान लीजिए बुद्ध को गहरा गहरा जानने की कोशिश कर रहे हैं.
So yes, we're now in the western quarter.
तो अभी हम पश्चिम कोने में है इस मंडल के.
So what is the west?
तो पश्चिम का अर्थ क्या होता है?
Well, the west is of course where Dhammashalina and I come from.
अब पश्चिम वो वही दिशा है जहाँ से धम्मशालिना और मैं आया हूँ.
Just a few days ago we flew from the west to come here.
तो हमने कुछ दिन पहले पश्चिम दिशा से हम आए इधर आने के लिए.
But that's not so significant now.
अब यह महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ.
So what is the west?
लेकिन पश्चिम क्या है?
Well, the west is where the sun goes down.
पश्चिम वह दिशा है जहाँ सूरज ढलता है. तो सूरज जो है पूर्व दिशा की ओर उगता है और पश्चिम दिशा की ओर ढलता है.
So, what feeling do you have as the sun goes down?
अब आपके मन में क्या भावनाएं आती है जब सूर्यास्त होता है?
Well, everything becomes cooler.
हर चीज कैसे मानो शांत शिथिल होते जाती है.
The light begins to go.
यह जो प्रकाश है यह धीमा होते जाता है.
And your mind turns inwards.
और हमारा मन जो है यह अंतर्मुख होने की कोशिश करता है.
In the southern quarter, it's midday.
जो दक्षिण कोना था इसमें मध्य दिन था या दिन का मध्य था.
So your energy is going out.
तो हमारी जो ऊर्जा है यह बाहर बहते रहती है.
But in the evening, your energy goes in.
और शाम को क्या होता है हमारी जो ऊर्जा है वह मानो हमें समाते रहती है.
So it's a time of turning in to the inner world.
तो यह समय होता है अपने आंतरिक विश्व को अंदर की दुनिया को जानने का.
Activity is ended.
हमारी जो गतिविधियां है वह समाप्त होते रहती है.
You're able to relax.
आप यानी आराम करते रहते हैं स्वस्थ मन के होते हैं.
You can even turn towards sleep.
शायद आप तब सोते भी रहते हो या सोने के लिए जाते रहते हो.
And in sleep, dreams come.
और सोने में क्या होता है सपने आते हैं.
So you're going into the inner world.
तो हम हमारे आंतरिक दुनिया में प्रवेश करते रहते हैं.
The world is as it were inside you.
मान लीजिए ऐसी दुनिया जो आपके अंदर है.
Not this world outside or around you.
ऐसी दुनिया नहीं जो आपके बाहर है या आपके इर्द गिर्द है.
So when you're in the west, you're in this mood of turning inwards.
तो जब आप पश्चिमी दिशा में होते हैं तो आपका मन जो है वह अंतर्मुख होने की कोशिश करते रहता है.
You find that in Indian music.
यह आपको भारतीय संगीत में मिलता है.
The evening ragas, I can't remember any of their names, he'll remind me.
भैरवी.
भैरवी. The भैरवी raga is a very reflective sort of mood.
तो आपको पता होगा भारतीय संगीत में जो भैरवी राग है यह भैरवी राग हमें चिंतन करने के लिए प्रेरणा देता है.
बराबर. करेक्ट. गुड. जस्ट नीड टू चेक. यस. सो द होल मूड ऑफ द इवनिंग इज टर्निंग इन रिफ्लेक्शन.
तो हमारा जो पूरी जो मानसिकता है वह अंतर्मुख होते रहती है शांत होते रहती है.
सो दैट्स द फर्स्ट एसोसिएशन विद द वेस्ट.
तो यह सबसे पहला क्या कह सकते हैं संबंध है पश्चिम से. अब मान लीजिए शाम का रंग कैसा होता है. जब सूरज अपनी पूरी ऊंचाई पे होता है तो यह धधकता हुआ मान लीजिए सोने जैसा होता है.
But as it approaches the horizon in the evening, it turns a deep red color.
तो जैसे जैसे यह अपने गोलाकार में जाता है शाम के तो धीरे धीरे यह लाल लाल होते जाता है.
You can't see so well from here, but there are many places in India where you get very, very beautiful sunsets.
यहाँ से शायद हम देख पाए नहीं लेकिन भारत में ऐसे कई स्थल है जहाँ से बहुत सुंदर सूर्यास्त हमें दिखता है.
We have a lovely retreat center at Bhodaran in Maharashtra, Vidarbha.
विदर्भ के महाराष्ट्र में वहाँ पे एक बोरधरण केंद्र है.
It's in the middle of jungle, tiger jungle.
यह शेरों से भरे हुए जंगल के बीच है.
And it's on the top of the hill.
और यह पहाड़ी पे है ऊंचाई पे है.
And there's a lake down below, it's a great dam.
और उसके बाजू में एक पानी की झील है.
And sometimes in the evening, as the sun comes down over the hills on the horizon, it's a great big ball of fire.
जैसे जैसे शाम ढलती है तो वहाँ एक मान लीजिए आग का लाल लाल गोला आता है.
It seems very, very big.
ऐसा दिखता है वो बहुत बड़ा है.
And it's beautiful, deep red color.
और यह बहुत ही सुंदर गहरा लाल रंग होता है.
Just to see that deep red color is very, very pleasing.
तो यह जो गहरा लाल रंग होता है उसे देखना बहुत ही सुखद लगता है.
So what does that color suggest to you?
तो यह रंग आपको क्या दर्शाता है क्या बताता है.
It's not a sort of, it's not a bright red, it's a deep red.
यह बहुत ही चमकता हुआ लाल नहीं गहरा लाल.
Yes, it's a bit like the red in the on the shrine cloth, the back of the shrine cloth.
यह आप देख रहे हैं पूजा स्थान में यह जो लाल रंग है इसके जैसा.
Maybe even a bit deeper than that.
इससे भी थोड़ा गहरा लाल.
So what do you feel when you see that?
कैसा लगता है जब आपको यह रंग दिखता है.
Will you feel warmth, emotional warmth?
आपको भावनिक उत्साह लगता है भावनिक तरीके से आप बहुत ऊर्जावान है ऐसा आपको लगता है.
I think that's what most people will find. most people will find that.
बहुत सारे लोगों के साथ यह अनुभव होता है.
That's the sort of effect of red, that deep red.
तो यही इसका प्रभाव है गहरे लाल रंग का.
You could say it is the color of blood.
ऐसा आप कह सकते हैं अपने खून का जो रंग होता है.
So it's a very warm, very loving sort of color.
यह बहुत ही प्यार भरा होता है, बहुत ही हमें भावनिक रूप से उत्साहित करता है.
So this is the color of the red Buddha of the west.
तो यह रंग है बुद्ध का जो पश्चिमी दिशा में है.
And the red Buddha of the west.
तो पश्चिमी दिशा में जो लाल बुद्ध है वो
here is a sort of pink color, but should be a deeper red than that.
यहाँ जो बुद्ध दिख रहे थोड़े से गुलाबी कलर के हैं, यहाँ बहुत लाल कलर चाहिए उनका.
So yes, the red Buddha of the west signifies this mood of turning in, but with great warmth, with great love.
यहाँ के जो शाम के या जो पश्चिमी लाल बुद्ध है, यह अपने प्यार का मान लीजिए जो प्रवाह है वो बह रहा है, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं.
You see that he's seated in ध्यान मुद्रा.
और आप देख रहे हैं वे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं.
Again, everything's turning in.
फिर से जो आप अंतर्मुख हो रहे हैं.
When you put your hands together like that, all the energy comes back.
जैसे अपने आप अपने हाथ ऐसी ध्यान मुद्रा में रखते हैं, आपकी सारी शक्ति आप में आते रहती है. जब आप भूमि स्पर्श करते हैं तो आपकी ऊर्जा मान लीजिए जमीन से जुड़ रही है, उससे मजबूत हो रही है. जब आप ऐसा हाथ करते हैं तो आपकी सारी शक्ति जो है यह दुनिया में बिखरती है, दुनिया में जाती है.
Hands together like that, the energy stays in.
जब हमारे हाथ हम ऐसे रखते हैं तो हमारी शक्ति है हमारे अंदर ही मंथन करते रहती है.
You can really feel this with these different mudras.
तो इन विभिन्न मुद्राओं से हम यह भाव महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं.
They definitely have an effect on the energy which is you.
निश्चित रूप से इसका प्रभाव आपके ऊपर होता है, जो शक्ति आपके ऊपर कार्य करते रहती है.
So when you fold your hands together in that way, the energy turns in meditation.
तो जब आप अपने हाथ ऐसी ध्यान मुद्रा में रखते हैं तो आपकी अपनी शक्ति अंतर्मुख होते रहती है अपने ही अंदर.
So the red Buddha of the west is absorbed in deep meditation.
तो जो लाल बुद्ध है इस तरीके से गहरे ध्यान में पूरी तरह समा गए हो.
Now the red Buddha of the west is associated with a red lotus.
तो जो पश्चिम दिशा के जो बुद्ध है लाल, यह लाल कमल से इनका संबंध है.
He usually holds a red lotus in the palm of his hands.
तो उनके हाथ का जो यह तलवा है इस पे वह लाल कमल को धरते हैं, पकड़ते हैं.
So imagine he's holding a beautiful red lotus in full flower.
तो आप इसकी कल्पना कीजिए कि उनके हाथ में यह पूरी तरह खिला हुआ लाल कमल है.
Well, that means the mind at its most expanded, it's most developed.
तो इसका अर्थ यह है कि आपका जो मन है यह पूरी तरह खुला हुआ है.
It's as if we're lotuses.
मान लीजिए जैसे आप पूरे खुले हुए कमल दल में कमल देखते हैं.
You remember the Buddha's vision just after his own enlightenment.
आपको याद आ रहा होगा मैंने बताया था बुद्ध के दृष्टि के बारे में उनके संबोधि के पश्चात.
He discovered the path to truth.
उन्होंने सत्य का मार्ग खोजा, रास्ता खोजा.
He wanted to share that with others.
और यह वो और लोगों के साथ बांटना चाहते थे.
But he thought, well, nobody's going to understand.
और उन्होंने सोचा कि शायद कोई इसे समझ नहीं पाएगा.
How do I communicate what I've seen?
मैं कैसे लोगों को संवाद करूंगा या कैसे बताऊंगा जो चीजें मैंने देखी है.
People won't be able to hear it.
शायद लोग मुझे सुनेंगे नहीं.
It'll be like selling something in a market when people don't want it.
शायद ऐसी चीज मैं बाजार में बेचना चाहता हूँ जो लोगों को जरूरत नहीं है, जो नहीं चाहते.
When people don't realize what it is and how valuable it is.
जब लोग इसको समझते नहीं है कि यह कितना अमूल्य है, मूल्यवान है, लोग उसका मूल्य नहीं करते हैं. तो इस तरीके की कोई दृष्टि बुद्ध के पास थी.
He saw a lotus pond.
तो उन्होंने क्या देखा, एक कमल कुंज देखा.
He saw that there were lotuses in different stages of growth.
उन्होंने देखा कि कमल जो है यह भिन्न भिन्न स्तर पे खिल रहे हैं.
Some of them were still buried in the mud.
कुछ कमल जो उसमें थे या अभी भी उस क्या कहते हैं कीचड़ में दबे हुए थे.
Some of them had sent up shoots.
कुछ कमल थोड़े से खिले हुए थे, ऊपर आए थे.
Some of them had developed buds and they come clear of the water.
और कुछ कमल उसमें से थे जो पानी में पूरी तरह आ गए थे लेकिन कलियां बन के थे.
Some of them were just beginning to open.
उनमें से कुछ कमल जो थे यह थोड़े से ऐसे खिले हुए थे.
And he saw that were beings in different stages of development.
तो उन्होंने इस तरीके से देखा कि विकास के ये भिन्न भिन्न स्तर है.
What everybody can do is grow.
क्या हर आदमी कर सकता है तो वह विकसित हो सकता है.
And those who have their bud a little bit open can hear the full dharma.
और तब उन्होंने देखा कि यह जो थोड़े थोड़े जो कमल की कलियां खुली है वो शायद धर्म को सुन सकते हैं.
So you could say that the Buddhists are lotus gardeners.
तो बुद्ध को हम ऐसा कह सकते हैं.
A gardeners of lotuses.
तो बागवान यह कमल पुंज का.
They're trying to grow us.
वो हमको खिलाना चाहते हैं.
We're lotuses.
क्योंकि हम सब कमल हैं.
Well, much of the time we're right down in the mud.
अब बहुत बार हम कीचड़ में होते हैं.
Sometimes we come a little bit up from the mud.
कभी कभी हम उस कीचड़ से थोड़े से ऊपर आ जाते हैं.
When we're on shivir, we come right clear of the water.
कभी कभी हम शिविरों में क्या होते हैं उस बिल्कुल पानी के ऊपर आ जाते हैं.
Our lotus is open a little bit.
अब हमारा जो यानी मन का जो कमल है वो थोड़ा सा ऐसा खुल जाता है.
Well, the job of the Buddha is to help us to open our lotuses fully.
तो बुद्ध का सबसे महान कार्य यह है कि वो अपने कमल को पूरी तरह खिलाना चाहते हैं.
So the Buddha of the West, the Red Buddha, holds a fully open lotus blossom.
तो पश्चिम के मंडल में यह जो बुद्ध है इस तरीके से पूरा खिला हुआ जो कमल है अपने हाथ पे रखते हैं.
And again, it's a beautiful deep red color.
और मान लीजिए यह बहुत ही सुंदर गहरा लाल रंग का होता है.
So then what? Animal is the red Buddha associated with.
तो अब कौन से प्राणी का संबंध है यहाँ पे लाल बुद्ध के साथ?
Well, this is quite interesting.
अब ये बहुत ही रुचकर ऐसा सवाल है.
I think you probably wouldn't be able to guess. That's a nice and interesting guess, but not correct.
आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा प्राणी वहाँ हो सकता है?
It's a peacock. More.
Yeah, more hai, peacock.
But why a peacock?
Ab more kyun?
But there are various reasons given.
तो बहुत सारे इसके भिन्न भिन्न कारण है यहाँ मोर का संबंध बताने के लिए.
The first is quite interesting.
अब पहला जो है ये बहुत रुचकर है.
Ancient Indians, your ancestors, used to ask themselves, how does the peacock get so many colors in its tail?
आप में से जो यानी आपकी जो पूर्वज थे यह अक्सर यह सवाल पूछते थे कि उसका जो मोर पिसारा या उसकी जो पूंछ होती है पंख की इसमें इतने सारे रंग बिरंगे रंग कैसे होते हैं?
Well, they said it's because the peacock eats snakes.
और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मोर जो है यह सांप खाता है.
I don't know whether your ancestors were correct in this, but this is what they believe.
अब मुझे नहीं पता आपके पूर्वज यह सही सोचते हैं या नहीं लेकिन ऐसा वह विश्वास रखते हैं.
My ancestors had never seen a peacock.
मेरे पूर्वजों ने कभी मोर देखा ही नहीं.
So yes, it said that the peacock ate snakes.
तो ऐसा कहते हैं कि मोर जो है यह सांप खाता है.
And it took the poison, it digested the poison, and that turned into the colors of its tail.
अब ऐसा कहते हैं या ऐसा हम समझ सकते हैं कि इस सांप को वह जो खाता है इसके विष के साथ उस विष का रंग वो पचाता है और वो सुंदर कलर में परिवर्तित हो जाता है.
Well, I'm not a zoologist.
अब मैं प्राणी शास्त्र के नहीं हूँ.
I don't know whether it's true. I suspect it's not true.
अब मुझे पता नहीं यह सत्य है या नहीं. मुझे लगता है शायद यह सत्य नहीं होगा.
But never mind. It's a beautiful story with a beautiful meaning.
कुछ भी हो लेकिन यह बहुत सुंदर कहानी है बहुत गहरे या सुंदर अर्थ से.
Through spiritual development, you take even the evil things and you transform them into something wonderful.
तो इसका अर्थ यही हम कह सकते हैं कि धम्म के आचरण से हम कितनी भी बुरी चीजें हो क्यों ना हो वह हम अपने अंदर ले सकते हैं. हम इसे सुंदरता में परिवर्तित कर सकते हैं.
The Buddha is made out of us.
क्योंकि बुद्ध जो है वह यानी हम में से बने हुए.
It's not that when you become a Buddha you have to have a sort of amputation, spiritual amputation, cutting off your limbs.
तो
it's not that you have to cut off your limbs in order to become the Buddha.
तो जब आपको अगर बुद्ध बनना है तो आपको कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता या आपको अपने हाथ पैर से काट के उसको बनाना नहीं पड़ता.
We don't have to cut off bits of ourselves so we become like the Buddha.
तो हमको कहीं से अपने को काट छाट नहीं करनी पड़ती बुद्ध जैसा बनने के लिए.
We have to transform ourselves.
हमें स्वयं को परिवर्तन करना होता है अपने आप का परिवर्तन करना होता है.
Just as the peacock transforms the poison of the snake into the colors of its tail.
जैसे कि मान लीजिए यह जो मोर है इस विष को परिवर्तित करता है अपने सुंदर पूछ में.
So that's the first meaning.
तो यह इसका पहला अर्थ है.
There's a second meaning suggests itself.
अब दूसरा इसका अर्थ है जो द्योतक है.
You know, you see a peacock.
अब आप मोर को देखते
हैं. It's a very, very ungainly bird, awkward bird.
Awkward.
Yeah, undignified.
यह ऐसा पंछी है जो बहुत ही अलग है, हटके है, जिसकी कोई अपनी यानी क्या कह सकते प्रतिभा नहीं है.
It has to carry a great big long tail.
उसको इतनी बड़ी ऐसी पूंछ ढोनी पड़ती है.
It's very difficult for it to walk. It's got this great big long tail.
तो इतनी बड़ी अगर उसकी पूंछ हो तो उसको चलना थोड़ा कठिन होता है.
So you think, what a funny bird.
तो आप सोचते हैं कि ये थोड़ा सा अजीबोगरीब पंछी है.
Up comes its tail.
लेकिन जब उसकी जो पूंछ है जब ऊपर आ जाती है.
And you think, what a magnificent sight.
और आप सोचते हैं कि क्या यह अप्रतिम सुंदरता है.
So again, it's an image of transformation.
तो फिर से यह एक प्रतीक है सुंदरता में परिवर्तित होने का.
There's one more meaning.
उसका और एक अर्थ है.
When you see the tail of a peacock, it's like lots and lots of eyes.
जब आप इस यानी खुले हुए पूछ को देखते हैं मोर के इसमें छोटी छोटी आंखें हमें दिखती है.
So this may be part of the meaning.
ये हो सकता है इस अर्थ का एक हिस्सा हो.
Because the wisdom of the red Buddha is the discriminating wisdom.
तो जो बुद्ध की जो प्रज्ञा है यहाँ पे यह
discriminating.
जो विभाजित करने वाली प्रज्ञा है.
Yeah, विभाजित.
भेद करने वाली प्रज्ञा है.
So the discriminating wisdom is able to see things very, very clearly, uniquely, in all their detail.
तो यह जो बुद्ध की प्रज्ञा है यह इसमें पूरी तरह भेद करती है और उसके सभी जो छोटे छोटे उनके यानी डिटेल्स को क्या कह सकते विस्तार है उसको वह देख पाती है.
To discriminate means to separate.
डिस्क्रिमिनेशन का यह अर्थ है चीजों को अलग अलग रूप से देखना.
We separate the ceiling from the floor.
जैसे मान लीजिए इस छत को इस तल से हम अलग देखते हैं.
We separate this microphone from that microphone.
हम इस माइक को इस माइक से भिन्न देखते हैं.
We separate this microphone from this stand.
और मान लीजिए इस जो माइक्रोफोन को है हम इसके स्टैंड से भेद करते हैं समझते हैं.
This is the faculty of discrimination.
तो इसे क्या कह सकते हैं भेद का अपने अंदर एक आयाम है भेद करने की हमें क्षमता है.
The ability to see differences.
तो हम क्या है इस भेद को देख पाते हैं.
This is a very important faculty.
और यह बहुत महत्वपूर्ण क्षमता है.
If we really want to understand things, we need to be able to discriminate.
अगर हमें चीजों को सही मायने में समझना है तो हमें उनमें भेद करते आना चाहिए.
We need to say this is not that.
हमें यह विचार करते आना चाहिए कि यह चीज यह नहीं है.
So, that's what we mean by discrimination.
तो यही हमारे भेद का यहाँ अर्थ है.
But of course, the Buddha's wisdom of discrimination is something much further than that.
लेकिन बुद्ध की जो यह भेद करने की जो प्रज्ञा है इससे कहीं परे है जो आप नहीं समझ पाए.
It's the Buddha's ability to see the uniqueness of every living being.
तो बुद्ध की भेद करने की यह सुंदरता है कि हर व्यक्ति में जो उनकी अपनी प्रतिभा है उसको व्यक्ति के रूप में वह देख पाते हैं।
Yesterday we saw the yellow Buddha has the wisdom of equality.
हमने कल पीले बुद्ध को देखा जिनमें समानता की या समता की प्रज्ञा थी।
The yellow Buddha sees that everything is fundamentally the same.
बुद्ध देखते हैं कि हर चीज मूलतः एक समान है।
He sees that everything fundamentally has the power to become the Buddha.
वह देखते हैं कि हर सजीव जो है यह मूलतः बुद्ध होने के लायक है, सक्षम है।
But the red Buddha sees that even though everything has the potential to become the Buddha, each person is completely unique.
वह देखते हैं कि भले ही सभी मानवों में या इंसानों में बुद्धत्व प्राप्ति की क्षमता है, लेकिन वह देखते हैं कि हर इंसान अपने आप में अलग है।
This is clearly related to love.
और इसका सीधा संबंध किससे है? प्यार से है।
To love, to feel Maitri, is to feel Maitri for the particular person.
प्यार का अर्थ यही होता है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए हम प्यार करते या हमारा प्यार होता है।
When you really like somebody, when you even love somebody, you see them as unique.
जब आप किसी से प्यार करते हैं, तो आप उसको एक अलग व्यक्ति या एक विशेष व्यक्ति करके आप देखते हैं।
Well, of course, we're all similar in many ways.
तो निश्चित रूप से हम कई तरीके से समान हैं।
You know, you can say, for instance, oh, English people are like this.
आप उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि अंग्रेजी लोग ऐसे होते हैं।
English people are very polite. बोलिए।
अंग्रेजी लोग जो है ये बहुत ही
He's very naughty. Indians are very naughty.
संवेदनशील है, मैत्री में थोड़ा सा नॉटी है।
And English people won't tell you what they really think.
और अंग्रेजी लोग जो है वो सही मायने में नहीं बताएंगे जो वो होते हैं।
You can say that.
आप ऐसा कह सकते हैं।
I won't tell you what I can say about Indians.
अब मैं नहीं बताऊंगा भारतीयों के बारे में मैं क्या सोचता हूँ।
Well, of course, Indians are very warm-hearted, very spontaneous.
तो भारतीय जो लोग होते हैं बहुत गर्म दिल के होते हैं और तुरंत यानी प्रतिक्रिया देते हैं।
So you can sort of make generalizations about people.
तो इस तरीके से हम सर्वसामान्य रूप से लोगों को समझते हैं।
But actually, every single person is completely unique.
लेकिन इस तरीके से हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप में एक अप्रतिम है।
When you begin to get to know them, they've got such a different flavor.
जब हम हर एक इंसान को मिलते हैं, तो उनके यानी उनकी अलग अलग खुशबू होती है, उनकी अलग अलग स्वभाव होते हैं।
You must have experienced that with the communication exercises.
जब हम लोग संपर्क सराव कर रहे थे तब शायद हमें यह अनुभव आ रहा हो।
You were sitting opposite one person.
आप एक व्यक्ति के आगे बैठे हुए थे।
And you got a very definite sort of feeling from there.
और एक निश्चित भावना आपको एक दूसरे के प्रति आ रही थी।
And then another person came and sat down instead of them.
और फिर आप जो व्यक्ति था उसको आपने बदल दिया।
And the experience is quite different.
और फिर जो आपका दूसरे व्यक्ति के साथ जो अनुभव था वह अलग था।
So the red Buddha of the West sees every individual as completely unique.
तो जो लाल बुद्ध है वह हर व्यक्ति को ऐसा अप्रतिम या विशेष रूप में देखते हैं।
And the red Buddha responds uniquely to each one.
और बुद्ध भी जो है हर व्यक्ति को एक विशेष प्रतिसाद देते हैं।
He sees each one as he or she is.
वह हर व्यक्ति को स्त्री हो या पुरुष हो वह जैसी है वैसी उसे देखते हैं।
And he brings them to maturity.
और उनको वह पूरी तरह परिपक्व होने के लिए मदद करते हैं।
So those eyes on the tail of the peacock may indicate this sort of discriminating wisdom.
तो यह जो मोर के पिसारे पे या उनके पुछ पे जो सुंदर सुंदर आंख है यह भेद करने वाली प्रज्ञा का द्योतक है।
So this is the red Buddha of the West.
तो यह है पश्चिम के लाल बुद्ध।
And you can see that the quality of love, of unique response to each individual is very much what he represents.
तो यह जो विशेषता है बुद्ध की प्यार की यह हर व्यक्ति के लिए विशेष है जो विशेष रूप से प्रतिसाद देती है।
You can see this with the Buddha himself in the historical records.
यह आप देख सकते हैं बुद्ध के ऐतिहासिक जो टिप्पणियां हैं उसमें
throughout the Pali Canon you see the Buddha responding to different kinds of individuals in an appropriate way.
पाली त्रिपिटक से हमें यह ज्ञात होता है कि बुद्ध हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से और विशेष रूप से मिले.
When he's talking to a farmer, he'll talk about planting seeds and plowing the fields and harvesting the crop.
जब वह किसी किसान से बात कर रहे हो तो वह बताते हैं कि कैसा हम हल जोतते हैं, कैसे हम बीज बोते हैं और कैसे फसल को उगाया जाता है.
When he's talking to a warrior, a king, he'll talk about armies, weapons, fighting.
जब किसी सैनिक के साथ वह बात करते हैं तो वह सैन्य की बात करते हैं, शस्त्र की बात करते हैं और वैसा उसको समझाने की कोशिश करते हैं.
So he responds to each person uniquely.
तो इस तरीके से विशेष व्यक्ति को वह विशेष रूप से प्रतिसाद देते हैं.
This is the nature of the Red Buddha of the West.
तो यह स्वभाव है लाल बुद्ध का जो पश्चिमी दिशा में है.
But obviously the figure of the Red Buddha is very much associated with meditation.
और यह जो पश्चिमी बुद्ध है इनका संबंध ध्यान से है.
So it's very important that we say a little bit more about meditation and what it means.
तो मैं यहाँ थोड़ा सा ध्यान के बारे में बताऊंगा इसका अर्थ क्या होता है.
I just want to say to those of you who are followers of Dr. Babasaheb Ambedkar that Babasaheb himself appears to have meditated.
बाबासाहब के अनुयायियों को मैं यह बात बताना चाहूंगा कि बाबासाहब स्वयं रोज ध्यान करते थे.
I just recently read a book about Babasaheb by his secretary, Nanakchand Ratu.
Nanakchand Ratu, जो उनके निजी सचिव थे, उनकी मैंने किताब पढ़ी.
And in that, Nanakchand Ratu says that every morning Babasaheb got up.
वह कहते हैं कि रोज बाबा साहब सुबह उठते थे, वंदना करते थे और ध्यान करते थे.
It's worth saying that because there's an idea about amongst his followers that Baba Sahib was against meditation.
यह मुझे बताने के लिए खुशी होती है कि अक्सर उनके अनुयायी यह कहते हैं कि बाबा साहब ध्यान नहीं करते थे या ध्यान को उन्होंने नकारा है.
I don't think that's true at all.
मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यह सत्य है.
What he was against was only meditation alone.
क्यों वह ध्यान के विरोध में होंगे जब वे स्वयं एक यानी ध्यान का व्यक्तिमत्व है.
In other words, where people just separated themselves from society and enjoyed their own private meditation.
क्या चीज से वह यानी विरोध करते थे कि लोग ध्यान करते थे और समाज से टूट जाते थे और केवल अपना ही सुख देखते थे यह उनका यानी संबंध था.
But he saw meditation as a way of gaining the strength and the understanding to serve society.
लेकिन उन्होंने ध्यान को इस माध्यम से देखा कि यह अपने आप को आंतरिक रूप से बल देता है, मजबूत करता है और समाज परिवर्तन के लिए यह शक्ति प्रदान करता
है. That's very much the mood with which we meditate in TBMSG.
तो यही हमारी एक मानसिकता होती है जब हम TBMSG में ध्यान करते हैं.
So what is meditation?
तो ध्यान क्या है?
Many, many different traditions, spiritual traditions, religious traditions teach meditation.
बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय और जो शिक्षक है वह ध्यान की पद्धतियां बताते हैं. मैं जहाँ पैदा हुआ जिस धर्म संप्रदाय में उसकी भी कुछ ध्यान परंपराएं थी.
In the old religion of India, there's meditation.
तो भारत के प्राचीनतम धर्मों में ध्यान था.
In Islam, there's meditation.
मुस्लिम लोगों में भी ध्यान की परंपरा है.
So all these traditions have meditation.
तो सभी परंपराओं में सांप्रदायों में ध्यान है.
But there's no doubt that in those traditions people do gain deep states of meditation.
और इसमें कोई यानी निस्संदेह है कि कुछ लोग इसमें प्रामाणिकता से ध्यान करके कुछ गहरी मानसिकता पाते भी होंगे.
No, I don't know. I don't want to speak much about other religions.
तो मैं और अन्य धर्मों के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा.
But what is distinctive about Buddhist meditation is that, in a sense, meditation experience itself is not enough.
तो क्या बौद्ध धर्म में ध्यान का यानी फर्क है कि
what is the difference?
it's not enough just to have a meditation experience.
यह केवल पर्याप्त नहीं है कि हम ध्यान का एक अच्छा खासा अनुभव लें.
You may become very, very concentrated.
हो सकता है आप बहुत ही गहरे एकाग्र हो गए हो.
You have a very strong feeling of bliss.
आपको बहुत यानी आपको ऐसा लगता हो कि मेरी जो भावनाएं है यह बहुत आशीर्वाद पर है या बहुत अच्छा आपको लग रहा हो.
More or less, yeah. And you may have a feeling of great expansion.
और आपको इसकी भावना आई हो कि आप बहुत विशाल हो रहे हो.
You may feel as if you're right above everything.
और आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं सब परिस्थितियों से ऊपर उठाऊ ऊंचा हूँ.
But that's not enough.
लेकिन यह पर्याप्त नहीं है.
Because you will come down again.
क्योंकि आप फिर से नीचे आ जाएंगे.
As long as you're not making an effort, you'll just come down again.
अगर आप प्रयास नहीं करेंगे या प्रयास करते नहीं रहेंगे तो आप फिर से नीचे आ जाएंगे.
When people are in that sort of state, they think that they're seeing God.
अगर ऐसी अवस्था में जो लोग होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि मैं ईश्वर को देख रहा हूँ.
But from a Buddhist point of view, it's just a state of mind that you've attained temporarily.
लेकिन बौद्ध परिपेक्ष में हम इसे ऐसा समझते हैं कि जो यह जो मानसिकता है यह हम कुछ समय तक पाते हैं.
In Buddhism, we meditate to see reality as it is.
बौद्ध धर्म में हम ध्यान को इस तरीके से देखते हैं कि सत्य का सही अस्तित्व या उसका स्वभाव.
So in Buddhism, we say there are two different stages to meditation.
तो बौद्ध धर्म में हम कैसे ऐसा कहते हैं कि ध्यान के दो विभिन्न स्तर है.
There's first of all what we call shamatha meditation.
सबसे पहले हम इसे कहते हैं समता ध्यान.
शमता
ध्यान.
Which means calming down.
जिसका अर्थ है कि शिथिल होना, स्थिर होना.
It means stillness.
इसका मतलब है स्थिर होना.
It means the mind clear and calm.
इसका अर्थ है अपनी मन की सुस्पष्टता और उसकी स्थिरता.
And all the turbulence, all the mental chatter has gone away.
उसमें जो हमारी मन की जो संभ्रमता है यह पूरी तरह दूर हो जाती है.
So what we say is that shamatha means overcoming five hindrances.
तो क्षमता का यह अर्थ ऐसा है कि जो पांच रुकावटें हैं उसके ऊपर हम उड़ जाते हैं.
And you will have experienced these hindrances yourselves during your meditation.
और हम इसका अनुभव करते हैं जब हम ध्यान का अनुभव लेते हैं या ध्यान करते हैं.
So I'll just tell you what these five hindrances are so you can understand better what shamatha meditation is.
तो मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा यह पांच रुकावटें क्या है ताकि हम समझ पाए क्षमता ध्यान का अर्थ क्या होता है.
So sometimes you're meditating and your mind will go towards something that you're attached to.
तो जब हम ध्यान करते हैं तब हमारा मन जो है हमारे जहाँ हमारा मन आसक्त है उसके तरफ बढ़ते रहता है जाता है.
So for instance, you're here in Bodhgaya.
अब उदाहरण के लिए मान लीजिए आप यहाँ है बुद्धगया में.
You're meditating.
आप ध्यान कर रहे हैं.
Your mind goes home.
और आपका मन जो है यह घर चला जाता है.
You have a sort of sometimes a longing to be back home.
हो सकता है कि बहुत दिनों से या देर से यह घर में ही हो.
Or you may be missing your sons or your daughters or your parents.
या आपको अपने माता पिता की बच्चों की बच्चियों की याद आ रही हो.
So you keep they're in your mind, they're on your mind.
तो इसका अर्थ यह है कि यह आपके मन में है.
So instead of being here, your mind is caught up with that longing, with that craving.
तो भले ही आपका शरीर यहाँ है लेकिन आपका मन जो है ऐसे आसक्ति से पकड़ा हुआ है.
So our minds are often caught up with wanting something that we think will make us happy.
तो हम हमेशा इस मानसिकता में होते हैं कि इस चीज के प्रति मैं आसक्ति उसको मैं पालूंगा और मुझे खुशी होगी.
And that will prevent you from enjoying happiness now.
और यह आपको अभी आनंद देने से रुकावट बनेगी, अभी आनंद देने से रोकेगी.
Then the second hindrance is the hindrance of hatred.
और दूसरी जो रुकावट है वह द्वेष की.
When you're meditating, your mind is just caught up with your anger, your hatred even against somebody who you feel is harmed.
तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन द्वेष से भर जाता है जिसकी हम गुस्सा करते हैं.
And you're just constantly thinking over what they've done, what they've said, and so on.
और हमेशा ही हमारा मन यह सोचने में मशगूल हो जाता है कि क्या उन्होंने मेरे साथ किया, मैं उसको ऐसा कहूंगा, उसने मुझे ऐसा कहा.
You're thinking about what you will do to deal with them.
और आप यह सोचते रहते हैं कि मैं इसके बाद, इसके पश्चात उसके साथ क्या बात करूंगा.
We all of us will experience this sometimes.
तो हम में से सभी लोग कुछ हद तक इसका अनुभव करते हैं.
Some people tend more to craving, some more to hatred.
कुछ लोग लोभ की ओर झुके होते हैं, कुछ लोग द्वेष की ओर झुके होते हैं.
I tend more to hatred than craving.
तो मुझे बहुत बार द्वेष आता है लोभ की तुलना में.
He's more of a craving type. So then our minds also experience various kinds of restlessness.
तो हमारा मन जो है यह कभी कभी अस्वस्थता से भर जाता है.
They're just sort of like blown around.
मान लीजिए बहुत ऐसी हलचल करते रहते उबलते रहते
हैं. Or in an excited way, wanting something, wanting more.
तो एक उत्तेजित भावना से मुझे यह चाहिए, मुझे यह चाहिए.
Or in a very anxious way, worried way.
और क्या बहुत ही वह चिंतित होते हैं, उत्तेजित होते हैं.
A particular thing, oh, I did that, I shouldn't have done that.
वह ऐसा सोचते हैं कि मैंने ऐसा किया, शायद मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए.
Or I should do that.
मैंने ऐसा करना चाहिए.
And worrying in that sort of way.
और इस तरीके से चिंता जो है उनके मन को घेर लेती है.
So the mind is very unstable, very unsteady.
तो हमारा मन जो है यह अस्थिर होता है.
This is the third hindrance.
यह है तीसरी रुकावट.
Audacya Kukrutya in Sanskrit.
इसे संस्कृत में हम Audacya Kukrutya कहते हैं.
In Pali, most commonly Audacya Kukrutya.
इसे हम पाली में Audacya Kukrutya कहते हैं.
So it means this state of restlessness and a sense of something done wrong.
ऐसी मानसिक अवस्था जो अस्वस्थ रहती है और कुछ तो भी हमने गलत किया ऐसा भाव लाती है.
This is the third hindrance.
तो यह तीसरी रुकावट है.
The fourth hindrance is dullness and sleepiness.
चौथी जो रुकावट है वह है हमारे यानी नींद और आलस्य से भरी हुई मनोवस्था.
You've got no energy.
हमें कोई ऊर्जा नहीं होती है, कोई उत्साह नहीं होता.
You sometimes see people are so sort of dull, even depressed, they can hardly lift their heads.
कुछ कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि वो इतने निरुत्साही होते हैं कि वो अपना सर भी ऐसा ऊपर उठाने के लायक
नहीं दिखते.
तो जब आप उनके साथ बात करते हो तो बिल्कुल बात नहीं करते, ऐसे झुके होते
हैं.
कभी कभी हम संपर्क सराव में इसका अनुभव लेते
हैं.
आप उनको ऐसा कहते हैं कि यहाँ फूल उगे
हैं
और वो कहते हैं हाँ फूल उगे हैं.
So yes, it's that sort of dullness, lack of energy, lack of stimulation.
तो इस तरीके के जो यह जो उत्साह है उसका अभाव उसमें होता है.
That can come from mental conflict, from a long period of oppression.
बहुत देर से अगर उत्पीड़ित हमारा मन रहा हो या हमारे मन में ऐसा कोई द्वंद्व रहा हो उससे शायद ऐसी मानसिक अवस्था आ सकती है.
One of the terrible things about this caste system is it oppresses people's energies.
सबसे भयानक बात अगर इस जाति व्यवस्था की अगर कोई है तो यह शक्तियों का उत्पीड़न करती है, दबाती है.
People become dull because they're not allowed to be lively.
लोग निरुत्साही हो जाते हैं क्योंकि उनको उत्साही जीवन जीने की प्रेरणा नहीं दी जाती.
So one of the wonderful things that Baba Sahib has done is wake people up, give them energy.
तो बाबा साहब ने सबसे सुंदर शायद यह कार्य किया है कि लोगों को उन्होंने जगाया, उनमें एक उत्साह भर दिया.
We've got a lot to do to wake a lot more people up.
हमें बहुत बहुत कार्य करना है बहुत सारे लोगों को जगाने के लिए.
Sometimes you're in this sort of dull state just because you're tired.
कभी कभी अगर हम बहुत थक गए हो तो शायद ऐसी निरुत्साही अवस्था में रह सकते
हैं. Just haven't had enough sleep.
शायद आप ठीक से सोए नहीं हो.
Or you're ill.
या आप बीमार हो.
But this fourth hindrance is a hindrance of dullness, sleepiness.
तो यह जो चौथी रुकावट है यह है निरुत्साही होने की या आलस्य से भरी हुई.
स्थाना निधा और तीना मिधा.
इसे हम स्थान मिधा संस्कृत में कहते हैं या पाली में इसे तीन मिधा कहते हैं.
the fifth hindrance is the hindrance of doubt.
तो पांचवी जो रुकावट है यह है संदेह की, शक की.
It's as if you can't make up your mind to do the meditation.
मान लीजिए कि आप अपने मन की पूरी तैयारी नहीं कर सकते ध्यान करने के लिए.
So you're sitting there with your legs crossed, your arms folded.
तो आप ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं, आपके हाथ ध्यान की अवस्था में होते हैं.
And you're thinking to yourself, well, maybe I shouldn't be here.
और आप ऐसा सोचते तुरंत सोच लेते कि शायद मैं यहाँ नहीं रहना
चाहिए,
या शायद मैंने अभी तुरंत ध्यान नहीं करना
चाहिए.
और आप जब आनापानसति की शुरुआत करते हैं तो आपको लगता है कि मैंने अभी मैत्री भवन करना
चाहिए.
और आप अगर आनापानसति चार अवस्थाओं में अगर ध्यान है तो आप सोचते हैं कि नहीं, इसकी कोई पांचवी स्टेप भी होनी
चाहिए.
इसका अर्थ यह है कि पूरी तरह हम अपने ध्यान की साधना में कटिबद्ध नहीं हो पाते, तो इसलिए हम कोई विकास नहीं करते हैं.
So, shamatha means that you've overcome these five hindrances.
So, shamatha का अर्थ यह है कि इन पांच रुकावटों से ऊपर हम होते इनको पार करते हैं.
This is our task during this retreat.
यही हमारा कार्य है इस शिविर के दौरान.
You need to get craving out of your mind.
अपने मन से हमें लोभ का क्या करना है.
You need to recognize craving and get rid of it.
हमें लोभ को पहचानना है और फिर उसे त्याग देना है, छोड़ देना.
You need to say, that's just craving to be home.
तो आपने पहचानना चाहिए कि हाँ, अभी ये मेरे घर का लोभ है.
That's craving for my son, craving for my mother, whatever.
मेरे बच्चे के लिए, माँ के लिए यह मेरा लोभ है.
Sometimes you can crave for your husband or wife.
या बीवी, मियाँ बीवी में भी लोभ होता है.
So you just notice what's going on and you get out of it.
तो आप पहचानते हैं कि क्या हो रहा है और आप फिर उससे मुक्त हो जाते हैं.
You notice hatred.
आप द्वेष को पहचानते हैं.
Yes, I'm just developing hatred again.
तो आप पहचानते हैं कि हाँ, अभी मेरे मन में द्वेष भर रहा है.
You get out of it.
आप उससे मुक्त होते हैं.
You recognize that you're just restless or anxious.
आप यह पहचानते हैं कि मैं अस्वस्थ हूँ, अस्थिर हूँ.
You just bring your energy down so that you're firm, so you're steady again.
तो आप अपनी ऊर्जा को जो या शक्ति को शिथिल करते हैं, स्थिर करते हैं.
And you get out of that restlessness and anxiety.
और फिर ऐसे उत्तेजित होने से या ऐसे अस्वस्थता से हम मुक्त होते हैं.
Or you notice that you're very sleepy and dull.
या आप इसको भी पहचानते हैं कि मैं सो रहा हूँ या मैं आलस से भरपूर हूँ.
So you fill yourself with light, you wake yourself up.
तो आप अपने आप को जगाते हैं, अपने आप को हल्का हल्का महसूस करते हैं.
Or you recognize that you haven't made up your mind to commit yourself.
या आप इसको भी पहचानते हैं कि शायद मैंने मेरे मन की पूरी तैयारी नहीं की है मुझे यह कटिबद्ध होने से.
So you make up your mind, yes, I will do this.
तो आप अपने मन की तैयारी करते हैं कि हाँ, अभी मैं यह करूंगा.
When you overcome the hindrances, you enter meditation proper.
तो जब आप इन रुकावटों से परे जाते हैं तब आप सही मायने में ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं.
That is shamatha meditation proper.
यही यानी निश्चित क्षमता ध्यान है.
And you enter what we call jhana.
और हम फिर प्रवेश करते हैं जिसे हम ध्यान कहते हैं.
This is a special mental state.
यह एक विशेष मानसिक अवस्था है.
It's a higher mental state.
यह एक उच्च मानसिक अवस्था है.
It's quite easily available to us. Some of you may have experienced it.
आप में से शायद कुछ लोगों को यह सहज प्राप्त हुई हो या इसका आपने अनुभव लिया हो.
When you overcome the hindrances, you will experience jhana.
जब हम इन रुकावटों के परे जाते हैं तो हम ध्यान का अनुभव करते हैं.
So jhana consists of, first of all, one-pointedness of mind.
तो ध्यान इससे परिपूर्ण होता है कि अपने मन की एक एकाग्रता होती है.
Your mind is firmly fixed upon the breath, for instance.
तो उदाहरण के लिए ऐसा कह सकते हैं कि हमारा मन सांस के ऊपर पूरी तरह केंद्रित है.
And it consists of a small amount of thought, but just connected with meditation.
हो सकता है कि कुछ विचार आपके मन में बाकी हो लेकिन आपका मन जो है ध्यान से संबंध बनाए हुए है.
So you're just thinking, oh, I'm concentrated.
तो आप सोचते हैं कि हाँ शायद मैं एकाग्र हो रहा हूँ.
Well, let me just concentrate a bit more firmly, a bit more deeply.
मुझे और एकाग्र होने से या और गहरा एकाग्रता करने के लिए मुझे प्रयास करना है.
So what thinking there is just directly connected with what you're doing. It doesn't take you away.
तो जो भी आप सोचते हैं उसके बारे में आप स्पष्ट होते हैं और यह आपको आपके मन को विचलित नहीं करता.
And then you experience a great deal of happiness and peace.
और फिर आप अपने मन का पूरी तरह आनंद उठाते हैं, शांति का अनुभव लेते हैं.
And also some energy beginning to flow through your body.
और आपके शरीर में इस तरीके की ऊर्जा या उत्साह निर्माण होता है, संचार होता है.
That can be intensely pleasurable.
और यह बहुत ही गहरी सुखदायी हो सकती है. और इसे हम प्रीति कहते हैं.
Gradually the thinking dies away.
Gradually thinking dies away.
Yeah.
धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे जो विचार है या केवल विचारधारा जो है यह खत्म होते रहती है.
You enter what we call the second jhana.
तो हम इसमें दूसरे ध्यान में प्रवेश करते हैं.
And in the second jhana, there's no thought.
और दूसरे ध्यान में कोई सोच नहीं होती.
This is amazing, isn't it?
अब यह आश्चर्यकारक है नहीं क्या?
You're fully awake, you're fully aware.
आप पूरी तरह जागरूक है.
But there's no thought.
लेकिन वहाँ पे कोई विचार नहीं है.
There's no words going through your mind.
कोई भी ऐसे शब्द आपके मन में घूमते नहीं रहते हैं.
You're just aware, just awake.
आप पूरी तरह सजग होते हैं, जागरूक होते हैं.
Then the happiness, the fruity becomes stronger and stronger.
तो इस तरीके से हमारा जो सुखद अनुभव है और अपनी प्रीति जो है यह मजबूत होते रहती है.
And you move on to the third yarn.
और फिर हम तीसरे ध्यान की ओर बढ़ते हैं.
In this stage, the priti has ended.
इसमें प्रीति समाप्त हो जाती है.
You're no longer experiencing these rushes of energy.
तो इस तरीके से आप अपने जो ऊर्जा का जो संचार है या फोर्स है उसे हम अनुभव नहीं करते.
You're just completely concentrated, completely happy.
पूरी तरह आप केंद्रित होते हैं, एकाग्र होते हैं, सुखी होते हैं.
In the fourth jhana, you can't even really talk about happiness.
और चौथे ध्यान में आप सुख की भी बात नहीं करते.
Not that you're unhappy, but you're sort of more than happy.
आप ऐसा नहीं कि आप वहाँ दुखी या सुखी नहीं है लेकिन सुख से भी आप वहाँ परे हैं.
You experience a great sense of contentment, of peace, of non-reactivity.
वहाँ पे आप पूरी तरह संतुष्टि का, शांति का और एक यानी कोई भी प्रतिक्रिया न देने की अवस्था में आप होते हैं.
Everything, nothing disturbs you.
कोई भी चीज आपको अस्वस्थ नहीं करती.
It's as if you're perfectly balanced.
ऐसा कह सकते हैं कि हम एक यानी आदर्श रूप से संतुलित हैं.
Then there are further states beyond that.
तो इसके आगे भी बहुत चरण है.
Experiences of infinite space, infinite consciousness.
ऐसे ये यानी कह सकते हैं कि एक असीम चेतना का हम अनुभव करते हैं.
Very wonderful experiences.
ये ऐसे बहुत ही अप्रतिम और सुंदर अनुभव को हम लेते हैं.
And they're very important. It's important to have these experiences.
और बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे अनुभव को हमें लेना.
Because they purify the mind.
क्योंकि यह हमारे चित्त की शुद्धि करते हैं.
But they're not enough.
लेकिन यह पर्याप्त नहीं है.
Because when you stop making effort, you lose them.
क्योंकि अगर आप अपने प्रयासों को शिथिल करते हैं तो आप इसे भूल जाते हैं या यह समाप्त हो जाता है.
So no amount of shamatha is enough. You can't have enough shamatha.
तो आपको यह पर्याप्त क्षमता नहीं होती. केवल क्षमता को जानना ही पर्याप्त नहीं है.
You have to move from shamatha to the second phase of meditation, which is vipassana.
तो यह जो क्षमता जो है इस क्षमता ध्यान से हमें और आगे बढ़ना होता है जिसे हम विपश्यना कहते हैं.
So in vipassana, you take that very concentrated, subtle mind that you develop through shamatha.
तो आप उसी मन को लेते हैं जो पूरी तरह स्थिर, शांत और एकाग्र है विपश्यना ध्यान में.
And you reflect on the nature of this life.
और फिर आप चिंतन करते हैं इस विषय में कि जीवन का सही स्वभाव क्या है.
You reflect on the three characteristics of this life that the Buddha pointed out.
तो हम तीन विशेषताओं के जीवन पे ध्यान करते हैं जो बुद्ध ने हमें बताया है.
The Buddha first of all pointed out that everything is impermanent.
बुद्ध ने सबसे पहली विशेषता इस जीवन की यह बताई है कि सारी चीजें अनित्य है.
The Buddha said that wherever you look, whether inside, outside, you will not find anything that's isn't impermanent.
बुद्ध ऐसा कहते हैं कि आप अपने अंदर देखिए या बाहर देखिए, ऐसी कोई भी चीज आप देख नहीं पाएंगे जो नित्य है.
There's nothing on this earth that's permanent.
ऐसी पृथ्वी धरातल पे कोई चीज नहीं है जो नित्य है.
Think of the Himalayas.
अब आप हिमालय का उदाहरण ले लीजिए.
You know, there's huge mountains in the north of India.
यह उत्तर भारत में आपने देखा है कि कितने विशाल पर्वत है.
Those mountains rose up an unimaginable long distance away in the past.
यह अगर प्राचीनतम काल से अगर हम देखते हैं तो इनकी ऊंचाई इतनी थी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते.
Those mountains are still being created.
और यह जो इतने सालों से यह जो पर्वत है जो के तू खड़े है जैसे के वैसे है.
India is traveling north.
क्योंकि भारत जो है यह उत्तर दिशा की ओर प्रवास कर रहा है, यात्रा कर रहा है.
It's traveling up into Tibet.
क्योंकि हम तिबेट की ओर बढ़ रहे हैं.
And where Tibet and India meet, the Himalayas are pushed up.
तो जैसे भारत जो है तिबेट के पास ऐसे चला जाएगा तो हिमालय और ऊपर होगा.
So these mountains, they're not permanent, they've been created.
तो यह जो हिमालय भी है इसका इसने कुछ निर्माण नहीं किया गया, यह तैयार हो गए.
And at the same time as they've been created, they're being worn away. They are being worn away.
जैसे यह तैयार हो गए हैं वैसे ही वो अभी धीरे धीरे खत्म भी हो रहे हैं.
So everything on this earth is impermanent.
तो हर चीज इस पृथ्वी पर अनित्य है.
And the Buddha said, you will not find a god or any other creature that is permanent.
तो आप ऐसी कोई भी यानी सजीव हो या निर्जीव हो कोई भी वस्तु नहीं पाएंगे. इवन देव भी भगवान भी क्यों ना हो ईश्वर भी क्यों ना हो वह अनित्य है.
Everything comes into being and passes away again.
हर चीज का निर्माण होता है और वो चले जाती है.
Then the Buddha said that there's no आत्मा.
और बुद्ध कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है.
There's nothing about you or me that is permanent.
कोई भी बात आपके बारे में या मेरे बारे में नित्य नहीं है.
There's not inside us some sort of element, some eternal element.
ऐसा कोई भी हमारे अंदर तत्व नहीं है जो नित्य है.
So the Buddha said you cannot find that.
तो बुद्ध कहते हैं कि आप इसे ऐसे कोई नित्य चीज को आप ढूंढ नहीं सकते.
And then the Buddha said that if you live in this world, you will have at least some suffering.
और बुद्ध ऐसा कहते हैं कि अगर आप ऐसे विश्व में अगर जीते हैं संसार में अगर रहते हैं तो यह दुखों से भरा हुआ है.
You cannot avoid it.
दुख को हम टाल नहीं सकते.
You may have long periods of great happiness.
हो सकता है आपके लिए सुख थोड़ा लंबा हो.
Sooner or later, suffering will come.
कभी ना कभी दुख आपको होगा ही.
And if you cling to anything in this life, you will definitely suffer.
अगर आप किसी चीज से आसक्त अगर हो गए तो निश्चित रूप से दुख आपके पीछे आएगा.
Sooner or later, what you cling to will be taken from you.
किसी भी चीज से अगर आप अभी पकड़े हुए या आसक्त है इसको आपको छोड़ना होगा.
So the Buddha says, be free.
बुद्ध कहते हैं तो मुक्त होइए.
लेट गो.
चीजों को जाने लीजिए.
एक्सेप्ट इम्परमेंस.
अनित्यता का स्वीकार कीजिए.
डोंट ट्राई टू क्लिंग टू एनीथिंग.
किसी चीज के प्रति आसक्त मत होइए.
इफ यू लेट गो, इफ यू स्टॉप क्लिंगिंग, यू विल एक्सपीरियंस फ्रीडम.
अगर आपने चीजों को जाने दिया और अनासक्त हुए तो आप मुक्ति का अनुभव करेंगे.
यू विल एक्सपीरियंस एन अनइमेजिनेबल ब्लिस ऑफ फ्रीडम.
फिर आप एक अप्रतिम या अकाल्पनिक ऐसे मुक्तता का अनुभव करेंगे.
You'll feel as if nothing can touch you, nothing can harm you.
और आप इसका अनुभव करेंगे कि कोई भी चीज आपको हिंसा या पीड़ा नहीं पहुंचा सकती. आप स्वस्थ रहेंगे.
You'll be able to watch whatever happens without any disturbance to your inner peace.
जो भी हो रहा है उसको आप पूरी तरह स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और आपकी आंतरिक शांति को यह विचलित नहीं करेगा.
You'll cling to nothing, so you'll be free.
क्योंकि आप किसी चीज से आसक्त नहीं होंगे तो आप मुक्त होंगे.
That doesn't mean you won't experience deep communication.
इसका अर्थ यह नहीं है कि हम गहरे संवाद का अनुभव नहीं करेंगे.
But it'll be communication without attachment.
लेकिन हम गहरा संवाद करेंगे अनासक्त होकर.
It doesn't mean that you will not be able to create in the world.
इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम दुनिया में कुछ निर्माण नहीं करेंगे.
But your creation will be without pride, without attachment.
लेकिन इसका अर्थ यह होगा कि आपने जो कुछ भी तैयार किया है या आपने जो कुछ भी निर्माण किया है उससे आप अनासक्त रहेंगे.
As long as you've got a body, of course you'll experience physical suffering.
निश्चित रूप से जब तक आपका शरीर है आपको दुख होगा.
That physical suffering will not create a mental suffering.
लेकिन यह जो शारीरिक जो पीड़ा है या शारीरिक दुख है यह आपको मानसिक दुख देगा ही ऐसा नहीं है.
You'll experience this wonderful state of peace, of happiness, of freedom.
आप बहुत ही सुंदर ऐसे शांति का और मुक्ति के मनोवस्था का अनुभव करेंगे.
And that is what the red Buddha represents.
और यही अर्थ है इस लाल बूंद बुद्ध का.
The red Buddha sitting in the western quarter represents this complete liberation.
तो यह जो पश्चिमी दिशा में जो लाल बुद्ध है इस इसका यह द्योतक है या इसका प्रतीक है.
Through the practice of meditation he's completely transformed himself.
तो ध्यान के द्वारा हम अपने आप को पूरी तरह बदलते हैं.
And he just sits in perfect peace.
पूरी तरह संपूर्ण शांति में वे बैठते हैं.
With a deep love for every one of us.
गहरी मित्रता या गहरा प्यार हम में से हर किसी के लिए.
Seeing each and every one of us as a unique human being.
हम में से हर व्यक्ति को एक विशेष मानव के रूप में वह देते हैं.
Helping us to mature ourselves so that we too can sit in peace.
हमें इसकी हमेशा ही मदद करते रहते हैं कि हम पूरी तरह परिपक्व बने उस शांति का अनुभव लेने के लिए.
नमो बुद्धाय. जय भीम.